चतुर्थ अध्याय। संदर्भ: आज के युग में कबीर की प्रासंगिकता। कबीर युग में सामाजिक असमता का प्रश्न जिस रूप में था उससे कहीं अधिक विकराल रूप आज है। कबीर युग से कई गुना अधिक आज शिक्षा का प्रसार है और विज्ञान की उन्नति के साथ सभी शिक्षण प्रशिक्षण के साधन उपलब्ध है, पर लगता है जो शिक्षा आज प्रचलित है वह भेद को घटाने की जगह बढ़ाने में सहायक है। आज शोषण, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, अनाचार और व्यक्तिगत सुख का स्थान सर्वोपरि है। आज व्यापारी अथवा अन्य पैसे वाले दूसरों को हानि पहुंचाकर लाभ की स्वार्थ पूर्ति में लगे हैं। लोभी संग्रही अपना ही पेट देखता है, दूसरे भूखे हैं इसे उसकी चिंता नहीं। दूसरों का गला दबाकर प्राण लेकर यदि पैसे मिले, सुख की सामग्री मिले, मन की हवस पूरी हो तो अन्याय नहीं। आज टेक्नोलॉजी दिन ब दिन विषय सुख की सामग्री में बढ़ोतरी कर रही है। परिणाम तो यह है कि जिनके पास सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं वे उनसे बहुत ऊंचे समझे जाते हैं। यह खाई यह भेद वैज्ञानिक उन्नति द्वारा लोभ की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के कारण है। कबीर युग में समाजवाद नहीं था, पर तब नीति न्याय धर्म की मर्यादा थी। आज खुले आम धर्म का स्थान अनाचार, बेईमानी, व्यभिचार ने ले लिया है। आज समाजवाद का आधार न धर्म है, न नैतिकता है और न है पूरी समाज की उन्नति। समाजवाद और धर्म निरपेक्षता की आड़ में व्यक्तिवाद, स्वार्थवाद, शोषणवाद, आतंकवाद दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। आज की शिक्षा, आज की व्यापारिक उन्नति, आज की टेक्नोलॉजी हमें नैतिक बुद्धि देने में असफल है। नैतिकता का नाम आज के परिवेश में लेना सदाचार की खिल्ली उड़ाना है। व्यभिचार ही धर्म है आज, और समाजवाद समता समृद्धि के नाम पर जेब भरना ही आज का पैसा है। तंत्र का ध्यान भी नैतिकता की ओर नहीं है। कबीर युग में नैतिक पतन रहा होगा, पर क्या इस विकराल रूप में नहीं? तब मनुष्य भगवान से डरता था, आत्मा की पुकार के विरोध में चलने में हिचकिचाता था, अनैतिक कर्मों से दूर रहने की चेष्टा करता था, गरीब से प्रेम करता था, प्रीति और करुणा की महिमा थी। और आज तो होड़ है पैसे कमाने की, कोठी खड़ी करने की, लंबी से लंबी दहेज पाने की और घूस देकर काम निकलवाने की। प्रश्न अत्यंत उज्ज्वल है। उज्ज्वल यह है कि यह सामाजिक पतन क्यों, यह समृद्धि और विपन्नता की खाई क्यों, अनेकता का ऐसा बोलबाला क्यों? दूध में पानी मिलाना, नकली दवा देना, भोजन में विष मिलाना, घूस देकर आर्थिक लाभ करना, यह अधर्म हमारे समाज को निगल रहा है। कबीर का बल हृदय शुद्धि पर था, आचरण की शुद्धता पर था, परमार्थ पर था, लोभ मोह से मुक्ति पर था, आत्मसंयम पर था, समता पर था, अभेद पर था। ये सब आज और भी उपेक्षित है। नैतिक आध्यात्मिक मूल्य आज व्यक्ति और समाज दोनों को ही चाहिए। समाज को प्रमुख मानकर व्यक्ति के आत्म तत्व की उपेक्षा करने से नैतिक मूल्य को सतत ह्रास है। समाज का पतन व्यक्ति के चरित्र से संबंधित है। गरीबी से अधिक आध्यात्मिक नैतिक खोखलापन बुरा है। गरीब व्यक्ति ईमानदार हो सकता है, उदार हो सकता है, सेवक हो सकता है, पर स्वार्थी तो दूसरों को अधिक से अधिक हानि पहुंचाकर पैसे का महल खड़ा करना चाहता है। शासन कानून बनाता है, पर कानून पर अमल व्यक्ति करता है। यदि व्यक्ति नैतिकता की अवहेलना कर चोरी चोरी दूसरों का गला घोट अर्थ संग्रह करता है तो वह कानून को भी धोखा देता है। अनैतिक घूस के बल पर आगे बढ़ता है, धर्म के बल पर ही नहीं, और उसके लिए हृदय की शुद्धता कोई अर्थ नहीं रखती। वह न आत्मा की परवाह करता है और न परमात्मा की। कबीर का सिद्धांत है कि मनुष्य ईश्वर की शरण में जाए सद्विचारों के लिए, आत्मबल के लिए, अभेद मार्ग पर चलने के लिए, क्रोध लोभ से बचने के लिए। जब मनुष्य जीव जीव में भेद न मानेगा, जीव ईश्वर को एक मानेगा, तब वह कैसे किसी के साथ विश्वासघात कर सकता है, कैसे दूसरों को धोखा दे सकता है, कैसे किसी का गला घोट सकता है और कैसे भ्रष्टाचार की रोटी खा सकता है। अतः कबीर का अध्यात्म ही एकमात्र सतपथ है। व्यक्ति और समाज दोनों के उद्धार का समाज में समानता तब तक नहीं आ सकती जब तक कि व्यक्ति अध्यात्मवादी बनकर शुद्ध बनने का प्रयत्न करे। शताब्दियों पश्चात भी आज कबीर हमारे लिए उतने ही प्रासंगिक है। कबीर की काव्य रचना का उद्देश्य इच्छा पूर्ति या लोक यश प्राप्त करना नहीं था, बल्कि वह तो आंतरिक शांति की खोज कर जन जीवन का कल्याण करना चाहते थे। कबीर के सारे आग्रह मनुष्य जीवन और जगत को संवारने के रहे हैं। कबीर की सोच और चिंताओं का केंद्र बिंदु मानव जीवन रहा है। कबीर कर्म नैतिक अंतर्दृष्टिकोण सच्चरिता संवेदशीलता और स्पष्टता के मार्ग पर चलकर ईश्वर को पाना चाहते हैं। उनके लिए समूचा ब्रह्मांड राममय है। तत्कालीन समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और रूढ़ियों का तार्किक खंडन कबीर ने किया। आज धार्मिक महजबी कट्टरतावादी ताकतें आपस में टकरा रही हैं, खूनी झड़पें फसाद हो रहे हैं और परस्पर शत्रुता बदला लेने के स्थायी मोर्चे ठन गए हैं। कबीर के युग में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां थीं, पर कबीर ने एक उदार स्वतंत्र मुक्त व्यक्ति के रूप में नई दिशा सुझाई, स्वतंत्रता अर्जित की, एक कठिन कार्य कर दिखाया। उनके अनुसार ईश्वर सूक्ष्म रूप में पृथ्वी के कण कण में समाया हुआ है। ईश्वर अल्लाह एक है, राम रहीम एक है, इनमें कोई मौलिक अंतर नहीं है। कबीर सजग विचारक थे। वह मनुष्य के दैनिक जीवन में सजगता के साथ साथ ऐसी भावना पैदा करना चाहते थे कि प्रत्येक काम अपनी बुद्धि और तर्क शक्ति के आधार पर करना चाहिए। वह मानव जाति को स्वावलंबी एवं आत्मविश्वासी बनाना चाहते थे। सांप्रदायिक भेदभाव मनुष्य के अंदर कटुता पैदा करते हैं। कबीर ने आध्यात्मिकता को संप्रदागत संकुचित बाह्य आचरों पूजा विधियों की तरह प्रचारित नहीं किया, बल्कि सांप्रदायिक कुहासों को छाटने का काम किया। उन्होंने अध्यात्म को भी सामाजिक मूल्य बनाकर प्रस्तुत किया है तथा धर्म दर्शन के द्वेत की खाई को पाटकर हिंदू मुसलमानों दोनों को आत्म अध्यात्म के एक मूल सूत्र में जोड़ने का काम किया। कबीर का अध्यात्म वह मूल आधार है जिसके द्वारा समूचे विश्व में पुनः एक परिवर्तन और क्रांति घटित हो सकती है। ऐसे ही उदात्त धार्मिक विचारों के कारण कबीर आज भी उतने ही प्रासंगिक है। उनके विचारों को आत्मसात करके ही हम समाज को उन्मुक्त व स्वच्छ वातावरण प्रदान कर सकते हैं, जिसमें धार्मिक कालुष्य न हो, हिंदू मुस्लिम भेदभाव न हो। इसलिए भारत की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह निसंकोच कहा जा सकता है कि कबीर आज अपने विचारों के कारण पहले से अधिक प्रासंगिक हैं, बल्कि अनिवार्य हो गए हैं। सांप्रदायिकता जातिवाद गैर बराबरी हिंसा हत्या से त्रस्त भारतीय समाज की वर्तमान व्याधियों को अपने काल में ही लक्षित कर इसके उपचार सुनाने वाले कबीर की वाणी आज सुनिश्चित अचूक औषधि है। आज भी राजनीतिक दल निरंकुश स्वार्थी भ्रष्ट और अनैतिक है। अपने वोट बैलेंस के सुरक्षित रखने के लिए यह शक्तियाँ घृणित हाथकंडे अपनाकर धार्मिक सांस्कृतिक असहिष्णुता का वातावरण समाज में पैदा कर रही हैं। कबीर ऐसी अराजक और अमानवीय प्रवृत्तियों वाले शासकों के प्रति जन समाज को सजग करके अंकुश लगाना चाहते थे। कबीर के यह विचार आज भी प्रासंगिक है। सामाजिक क्षेत्र में भी कबीर के विचार अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। वे वर्गीय जातीय संप्रदाय भेदभाव के कट्टर शत्रु है। भले ही हिंदू हो या मुसलमान, सेव हो या वैष्णव, नाथ योगी हो या बौद्ध सिद्ध, पंडित हो या मुल्ला, राजशाही हो या अंधविश्वासी, सामाजिक सत्ता कबीर निद्वंद निर्मम निष्पक्ष अचूक वार करने से नहीं चूकते। दूसरी ओर राजसत्ता के हाथों उत्पीड़ित सहा सामाजिक उपहास बर्दाश्त किए धार्मिक आक्रमणों का साहस विवेक से सामना किया। कबीर मानो के बीच समानता चाहते थे। उनके अनुसार सभी व्यक्ति समान हैं तथा एक ही ईश्वर की संतान है। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र ऊंच नीच आदि के भेदभाव समाज को तोड़ने एवं निहित स्वार्थों को पूरा करने का बहाना मात्र है। कबीर ने अपने व्यंगों और तर्कों के द्वारा सामाजिक विषमताओं का खंडन किया है। जैसे पाणे कौन कुमती तो ही लागे तू राम न जब ही अभागे, पाणे कौन कुमती तो ही लागे तू राम न जब ही अभागी, वेद कुरान पढ़त अस पाड़े खर चंदन जैसे भारा, राम नाम तत समझत नाही अंत पड़े मुख छारा, वेद पढ़िया या यहू फल पाड़े सब घर देखे रामा। वेद पढ़िया या यहूँ घर वेद पढ़िया या यहूँ फल पांडे, सब घर देखे रामा जन्म मरत थे तो तू छूटे सुफा है सब कामा। कबीर ने सामाजिक वैषम्य को दूर करने हेतु जनता को जागरूक करने का प्रयास किया। कबीर की यह दृष्टि भी आज पथ प्रदर्शक है, आज भी मानो वर्गगत पीढ़ियों में जकड़ा है। ऊंच नीच का भेदभाव आज भी मान्य है। वर्षों पहले कबीर के समानता के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है। समाज के चतुर्दिक विकास के लिए आज हमारे लिए कबीर के विचारों को अपने जीवन में ढालना अत्यंत आवश्यक है। वस्तुतः कबीर ने सर्वथा पृथक एक मर्यादित संयमित सात्विक चिंतन पद्धति का विकास किया और समूचे समाज को नैतिक बल की आधार स्थली पर ला खड़ा किया। सामाजिक बिखराव को रोका, विसंकलित होकर बिखरने से बचाया। अतः धर्म के साथ समाज के आचरण को जोड़कर कबीर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस भूमिका पर उन्होंने दोनों ओर ही सांप्रदायिकता कट्टरता पर आक्रमण किए तो दोनों धर्मों की शास्त्रीय धर्म पद्धतियों की जकड़बंदियों और लोह किले बंदियों को अकाट्य तर्कों से काटा। ऐसी तर्क शक्ति विकसित की जिसकी काट नहीं हुई। इस तर्कशीलता और सजग प्रश्नशीलता के सामने कट्टरता के मजबूत दुर्ग ढहते टगमगाते मिले। हर रूढ़ आचरण वैचारिक अंधता और तर्कहीन पद्धति के आगे ऐसे प्रश्न चिन्ह खड़े किए कबीर ने जिनके बचकर निकल पाने का कोई रास्ता नहीं रहा। कबीर ने सदैव हृदयगत सरलता सहजता और निश्चलता पर बल दिया है। उनके अनुसार हृदय की शुद्धता के बिना हरि नहीं मिल सकता। सच्चाई का मार्ग अपनाना तथा दूसरों के प्रति शुद्ध भाव रखना नितांत आवश्यक है। प्रसंग कबीर का क्रांतिकारी व्यक्तित्व। कबीर अपने युग के एक सबल प्रतिभाशाली क्रांतिकारी थे। एक क्रांतिकारी प्रतिभा संपन्न विचारक के नाते कबीर ने मध्ययुग की जनता को जनहित का मार्ग सुझाया। कबीर में प्रतिभा के साथ ही साथ अनुशीलन की विलक्षण शक्ति भरी पड़ी थी। अनुशीलन की उनकी परख की कसौटी थी। अनुशीलन के पश्चात सत्य जांचने वाली वस्तु का समर्थन और असत्य लगने वाली वस्तु का खंडन करना वह अपना धर्म समझते थे। आत्मा और परमात्मा के जटिल ग्रंथों को खोलने के साथ ही साथ कबीर ने व्यक्ति के जीवन की सच्चाई पर भी विशेष बल दिया है और आचरण का आदर्श जनता के सामने रखा। कबीर ने हर स्थान पर मिलने वाले ऊंचे विचार को अपनाया है, उसका सम्मान किया है और यही विचार वास्तव में कबीर की वाणी की वह अमूल्य संपत्ति है जो युग युग तक मानव के अंधकारपूर्ण मार्ग को प्रकाशमान करते रहेंगे। कबीर का समस्त जीवन उनके काल की परिस्थितियों की प्रतिक्रिया है। कबीर के जीवन की क्रांतिमय भावना अब भी युगीन अंधकारपूर्ण प्रवृत्तियों का साथ नहीं दे सकती थी। अनेक धर्म और साधनाओं के बीच बाह्य आडंबरों और स्वार्थ की पोल देखकर कबीर तिलमिला उठे। समाज धर्म दर्शन और सभी विचारों प्रवृत्तियों तथा साधनों पर कबीर की दृष्टि गई और कबीर ने सभी को अपने दृष्टिकोण से पछोर कर देखा और अनुशीलन द्वारा परखा। अपने समय की विभिन्न परिस्थितियों के विकट बने रहते हुए भी उन्होंने अपने विचार बड़े स्पष्ट शब्दों में एक निर्भीकता के साथ प्रकट किए, जिस कारण उनके द्वारा एक महान भावी आंदोलन को गति मिली। उन्होंने किसी वर्ग विशेष के प्रति कोई मुरव्वत जाहिर नहीं की। उनमें आ गई त्रुटियों की ओर निर्देश करते हुए उन्होंने उन पर निष्पक्ष भाव से विचार करने का प्रबल आग्रह किया तथा किसी प्रथा परंपरा विशेष के साथ आंख मूंद कर चिपके रहने वालों को उन्होंने कड़े से कड़े शब्दों में फटकार लगाई। उन्हें इस बात की कदाचित परवाह न थी कि उसके कारण मेरे प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शित किया जा सकता है, मेरा सामाजिक बहिष्कार किया जा सकता है अथवा मुझे अधिकारियों की ओर से दंड का भाजक तक भी बनना पड़ सकता है। कबीर का जीवन हमें प्रयोगों और सत्य अन्वेषणों की श्रृंखला से प्रतीत होती है। शाश्वत आत्मतत्व का कबीर की अलौकिक प्रतिभा द्वारा गुणगान नहीं किया जा सकता, वरन इतिहास लिखा गया है। इस खोज और परख के प्रयोगों को करते समय जो असत्य और मिथ्या जचा है उसके त्याग पर बल देने में कबीर ने संकोच नहीं किया। कबीर इस दिशा में महान क्रांतिकारी रहे हैं। प्रतिभा की चारों प्रधान शक्तियाँ तत्व ग्रहणी शक्ति, तत्व धारणा शक्ति, उद्भावना शक्ति और अभिव्यंजना शक्ति कबीर में अपरिमित रूप से विद्यमान थी। केवल सुनने मात्र से वह तत्व ग्रहण कर लेते थे। जटिल से जटिल विषय उनके समझ सरल और सहज थे। हिंदू और मुसलमानों के दर्शन को आत्मसात कर अपना साम्यवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत कर देना कबीर की प्रतिभा के तत्व ग्रहणी शक्ति के ही फलस्वरूप संभव हो सका। तत्व जानने के साथ ही साथ उन्हें हर क्षण धारण किए रहने और स्मरण रहने की शक्ति भी कबीर में विशेष थी। कबीर का मस्तिष्क एक सागर के समान था, जिसके अंतर में तथ्य और अनुभव के असंख्य रत्न विद्यमान थे। कबीर के विचारों का तो साचा ही अलग है, और वह है सहज का साचा। केवल सहज शब्द से कबीर का दर्शन, कबीर की विचारधारा, कबीर की कल्पना, कबीर की अभिव्यंजना ही कबीर की वाणी का प्राण है। कवि की प्रतिभा को अनुप्राणित करने वाली शक्ति यही अभिव्यंजना है, और इसी के द्वारा कवि के भावों की अभिव्यक्ति होती है। यहाँ आचार्य हजारे प्रसाद जी का निम्नलिखित वाक्य द्वारा फिर से कानों में बज उठता है। कबीर भाषा का डिक्टेटर है। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसी रूप में भाषा को कहलवा लिया है। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लचर सी नजर आती है। उसमें मानो इतनी हिम्मत ही नहीं कि वह लापरवाह फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना ही कर सके। कबीर ऐसे क्रांतिकारी हैं जिसके सामने आज तक की सभी क्रांतियां अधूरी हैं, अपूर्ण हैं। कबीर के विचारों में आधुनिकता ही नहीं, उत्तर आधुनिकताएं समाहित है। साम्यवाद, जनवाद, वाम नववाम के विचार हों या अस्तित्ववाद के मूल्यमान, कबीर ने लगता है अपने समय में खड़े होकर भविष्य की सदियों तक की वैचारिक संभावनाओं का साक्षात्कार कर लिया है। शीर्षक क्रांति के परिप्रेक्ष्य में कबीर और गांधी में एक साम्यता। युग की आंधी जिसे झुका न सकी, विपक्षियों के षड्यंत्र जिसे तोड़ न सके, समाज की आँच जिसे गला न सकी, वह कबीर इस नवयुग में गांधी बनकर आया। आज की सदी इस कबीर के अभाव में कैसे छटपटा रही है। कबीर का संत रूप गांधी में आया, और साथ ही उनका अक्खड़ समाज सुधारक भी गांधी को कोमल काया में प्रवेश कर गया। कबीर को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन आधुनिक कबीर की लंगोटी और लाठी को देखकर हम कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ कहने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। जिस संत के मुंह से एक दिन जो अपनी काया को पत्थर बनाकर रखता है, वह एक ही जगह बैठे हुए सारे संसार को हिलाया करता है, निकला हुआ संत कैसे होगा, यह अनुमान किया जा सकता है। कबीर का समाज गांधी के समाज की युग की दृष्टि से काफ़ी दूरी रखता है, हुआ परिस्थिति की दृष्टि से काफ़ी निकट है। मुस्लिम राजसत्ता से पिसती हुई जनता को आध्यात्मिक स्वराज्य देने वाले कबीर आए। अंग्रेजी राजसत्ता से भारतीयों को राजनीति स्वराज दिलाने गांधी आए। दोनों जातियों की कटाकटी से दोनों सुधारकों को एक समान ही सामना करना पड़ा। उन्हें समझाने बुझाने का तरीका दोनों का एक ही था। गांधी के राम धुन में ब्रह्म की जो सत्ता स्वीकार की है, वह सर्वसदीय ही नहीं सर्वकालिक है। गांधी का राम रघुपति होते हुए भी तुलसी का दशरथ सूत नहीं है। तुलसी का राम अल्लाह नहीं हो सकता, गार्ड नहीं बन सकता। गांधी का राम कृष्ण भी है, रहमान भी है, राम है तो रहीम भी, खुदा भी है वही है, अल्लाह भी वही है। यही कारण है कि उनके राम धुन में सिर्फ गीता का ही पाठ नहीं कर होता, कुरान और बाइबिल भी पढ़ जाते हैं। यदि विश्वास हो तो महर्षि के ही शब्दों में उसके राम का दर्शन कीजिए। ईश्वर निश्चय ही एक है। वह अगम अगोचर और मानव जाति के बहुजन समाज के लिए अज्ञात है। वह सर्वव्यापी है। वह बिना आँखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है। वह निराकार और अभेद है। वह अजन्मा, उसके न माता है, न पिता है, न संतान। अगर हम उसे पहचान सके तो वह हमारे बहुत नज़दीक है, पर अगर हम उसकी सर्वव्यापकता का अनुभव न करना चाहें तो वह हमसे अत्यंत दूर है। कबीर का राम अतीन्द्रिय लोक का वासी है। गांधी का राम भी उसी लोक में निवास करता है। वस्तुतः दोनों राम एक ही हैं। ठीक उसी तरह जैसे कबीर और गांधी दोनों संत दो नहीं हैं। कबीर ब्रह्म को सर्वत्र मानते हैं, गांधी भी उसे सब जगह देखते हैं। सर्वव्यापी होते हुए भी वह विश्व में लिप्त नहीं है, इससे सर्वथा परे है। वह हमसे व्याप्त है, वह हम में व्याप्त है और फिर भी हम में हमसे परे है। वह बड़ा सहनशील है लेकिन वह बड़ा भयंकर भी है। उसका व्यक्तित्व इस दुनिया में और मनुष्य की दुनिया में भी सबसे काम करने वाली ताकत है। वह एक है और अनेक भी है, अणु से भी छोटा है और हिमालय से भी बड़ा है, समुद्र की एक बिंदु से भी समा सकता है और ऐसा भारी है कि सात समुद्र मिलकर भी उसे सहन नहीं कर सकते। उसे जानने के लिए बुद्धिवाद का उपयोग ही क्या हो सकता है। वह तो बुद्धि से अतीत है। ईश्वर का अस्तित्व मानने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। कबीर ने एक दिन इसी तरह हार कर ऐसा है तैसा लो कहा था। बुद्धि जब थक गई थी तब वे निराश हो गए थे। अंत में उन्होंने कहा था, अरे मूर्ख, श्रद्धा के साथ भज जीवन नाम सवेरा। गांधी को काया में गुलजार गाकर घट ही खोजो भाई का संदेश दिया था। गांधी का कहना है कि हृदय की गुफा ही वह गगन गुफा है जहाँ सहस्र रस की वृष्टि होती है। यह सच्ची गुफा है जहाँ पास में ही राम मिल जाएगा। गांधी उपदेश देते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह उसमें सुरक्षित रहकर संसार में रहते हुए भी उससे अलिप्त रहे और अनिवार्य कामों में संवृत्त होते हुए विचरण करे। स्वर्ग और पृथ्वी सब हमारे ही अंदर है। हम पृथ्वी से तो परिचित हैं पर अपने अंदर के स्वर्ग से बिल्कुल अपरिचित है। इस गुफा में गांधी कबीर की इस अंतर्नाद भी सुनते हैं। मैं मानता हूँ कि हृदय में सत्य का तादृश ज्ञान, सत्य का साक्षात्कार ही अंतर्नाद है। गांधी के जन आंदोलन के सुधारों को देखने से हमें ऐसे व्यक्तित्व का दर्शन होता है जिसे अपनी धुन के आगे किसी की भी परवाह नहीं, किसी का डर नहीं, जो वृद्ध अवस्था में भी मृत्यु के मुंह में पैदल नोआ खाली के बांधों पर दौड़ सकता है, वह साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। गांधी ने सोचा कि जब तक हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह नहीं रहते तब तक स्वराज असंभव है। धार्मिक एकता का मिशन लेकर गांधी का भारत में अभ्युदय होता है। वे कहते हैं, इस समय आवश्यकता इस बात की नहीं है कि सबका धर्म एक बना दिया जाए, बल्कि इस बात की है कि भिन्न भिन्न धर्मों के अनुयायी और प्रेमी परस्पर आदर भाव और सहिष्णुता रखें। गांधी कबीर की ही बात दोहराते हैं, भारतवर्ष एक पक्षी है, हिंदू और मुसलमान उसके दो पंख है। आज ये दोनों पंख अपंग हो गए हैं और पक्षी आसमान में उड़कर स्वतंत्रता की आरोग्यप्रद और शुद्ध हवा लेने में असमर्थ हो गया है। इसलिए बाहरी मिलाप से पहले दिल का सम्मिलन आवश्यक है। ईट चुने को चुनाई के पहले हृदय मंदिर की चुनाई बहुत जरूरी है। अगर यह हो जाए तो और सब तो हुआ ही है। हिंदू मुस्लिम की मित्रता सिर्फ भारत के लिए ही मंगलप्रद नहीं है, सारे विश्व के लिए कल्याण का एक आदर्श है। हिंदू मुस्लिम मित्रता का हेतु है भारत के लिए, सारे संसार के लिए एक मंगलमय प्रसाद होना, क्योंकि इसकी कल्पना के मूल में शांति और सर्वभूत हित का समावेश किया गया है। दोनों जातियों के आचार विचार को नाप तोल कर देखने के बाद कबीर ने बुरे को बुरा और भले को भला कहा था। गांधी के जमाने में दोनों जातियां बाजा बजने अर्थात मस्जिद के सामने किस कारण ही अधिक उजलती थी। कबीर की शैली में गांधी समझाते हैं, हिंदू धर्म कोई भी ऐसी विधि नहीं है जो बिना बाजा बजाए हो सकती। कितनी ही विधियां तो ऐसी हैं जिनमें शुरू से आखिर तक बाजा बजाना जरूरी है। हाँ, इसमें भी हिंदुओं को इतनी चिंता जरूर करनी चाहिए कि मुसलमानों का दिल न दुखने पाए। बाजा धीमे धीमे बजाया जाए, कम बजाया जाए। इस्लाम में ऐसा कोई फरमान नहीं है जिससे दूसरों के बाजे को बंद करना लाजमी हो। इसलिए मस्जिद के सामने विधर्मी के बाजा बजाने से इस्लाम को धक्का नहीं पहुंचता। अतएव यह बाजे का सवाल झगड़े का मूल नहीं होना चाहिए। उनके बीच बचाव की नीति देख चुके, अब सर्वधर्म स्वतंत्र की चर्चा सुनिए। अगर इस्लाम के लिए एक खुदा को या उसके पैगंबर की अनंत परंपरा को मानना काफ़ी हो तो हम सब मुसलमान हैं, इसी तरह हम सब हिंदू और ईसाई भी हैं। सत्य किसी एक ही धर्म की एकांतिक संपत्ति नहीं है। कबीर और गांधी इन दोनों संतों की अभिव्यक्ति का माध्यम लगभग एक ही था। पोथी की भाषा को छोड़कर उन्होंने जन भाषा को अपने काम लायक छाटा। दोनों का उद्देश्य एक ही था, अधिकाधिक लोग उनकी भावनाओं को सुने, समझे, बुझे। कबीर को अधिकतर निम्न स्तर के लोगों के बीच क्रांति की आग फैलानी थी। गांधी को भी गांव-गांव में घूम-घूमकर देहातियों तक अपनी आवाज़ पहुंचानी थी। इन दोनों की भाषा में प्रसाद युग कूट कूट कर भरा हुआ है। सहज बोध गम्यता की दृष्टि से इनके प्रवचन अपनी मिसाल नहीं रखते। कहा जा चुका है कि गांधी का क्षेत्र दर्शन ही राजनीति था, इसलिए ब्रह्म संबंधी तात्विक विवेचन इनमें कम मिलता है तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन बात ही बात में जो कुछ भी ईश्वर के संबंध में गांधी ने कहा है, उसमें उन्होंने कबीर की बात ही दोहराई है। ईश्वर न काबा में है न काशी में है, वह तो घर घर में व्याप्त है, हर दिल में मौजूद है। ऐसा होना कोई मुश्किल नहीं, आखिर वे दोनों दो थोड़े ही थे। कबीर ने आध्यात्मिक, दार्शनिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में पतन उन्मुख समाज को नैतिक एवं क्रियात्मक संबल देकर एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े होने का साहस प्रदान किया। कबीर की वाणी में ब्रह्म अनुभूति की जो अभिव्यक्ति मिलती है, उससे उन्होंने न केवल उन जन समाज का ब्रह्म से रागात्मक परिचय कराया, अपितु धार्मिक आडंबरों, सामाजिक अनाचारों तथा राजनीतिक अत्याचारों से शोषित और मूढ़ निर्वाक जनता की प्रसुप्त चेतना को उद्भूत किया। उसे ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि दी जो भारत की आत्मा को जागृत रख सकी। वस्तुतः यही कबीर की सबसे बड़ी देन है। तत्कालीन ब्रह्माचारों एवं अनावश्यक क्रियाकलापों ने धर्म की प्राण तत्व को निष्क्रिय सा कर दिया था। उन्होंने व्यक्त चरित्र को सामाजिक परंपराओं एवं मान्यताओं से अधिक महत्वपूर्ण माना। धर्म को वर्ग विशेष की पैतृक संपदा समझने वाले थोथे आचार प्रधान अधिकारियों से लोहा लेकर इसे जन समाज के लिए बंद धर्म के द्वार की अर्गलना को खोलने वाले प्रथम साहसी कबीर है। महात्मा गांधी के अछूत आंदोलन का उर्स कबीर में है। योगियों की जटिल दैहिक क्रियाओं का विरोध करके भी उन्होंने स्वच्छ देह को स्वीकारा। पूजा के बाह्य उपकरणों का मानसीकरण किया, बाह्य आचार के स्थान पर मानसिक परिष्करण पर बल दिया है। गंगा स्नान करने वाले को अंतर स्नान कराया, मन का फेर वाले को मन का पकड़ाया, तीर्थों में भ्रमण करने वाले को सद्गुरु रूपी तीर्थ के दर्शन कराएं, मंत्र जप के स्थान पर नाम जप का वरदान दिया, ज्ञान भक्ति और कर्म की एकांकिता का विरोध कर तीनों का उचित समाहार कर समाज को समन्वित दृष्टि दी। उन्होंने आचरण की पवित्रता पर बल दिया, आत्म परिष्कार में ही समाज का परिष्कार माना। हिंदू मुसलमान का धार्मिक विद्वेष, उनकी परस्पर घृणा तत्कालीन समाज की भयंकर समस्या थी। ऐसे विकट क्षणों में राम, रहीम, काशी और काबा की एकता का उच्च स्वरों से उद्घोष कबीर ने किया। एकता का यह एक स्वर केवल कानों को छूकर नहीं लौटा था, वरन हृदय तल तक जा पहुंचा था। कबीर ने चित्त वृत्तियों को परिमार्जित करके लोगों को अधिक उदार बना दिया। दाम्पत्य जीवन ही समाज की वह धुरी है जिस पर सारा समाज घूमता है। यदि यही पवित्र न हो तो सारे समाज सामाजिक संबंधों के दूषित होने की संभावना बनी रहती है। विचारों की दृष्टि से कबीर एकदम आधुनिक है। वे आज से 600 वर्ष पहले की ऐसी बातें कह चुके हैं जिन पर आज भी आचरण करने की बड़ी आवश्यकता है। यदि समाज को विकास की चेतना देनी है तो जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना ही होगा। यह दृष्टिकोण तर्कसंगत होता है, इसमें झगड़े की गुंजाइश नहीं रहती। कबीर पढ़े लिखे न थे, फिर भी वे शिक्षा ज्ञान का महत्व भली भांति जानते थे। वे जनपदी भाषा के माध्यम से विभिन्न जनपदों को शिक्षित करना चाहते थे। वे सच्चे अर्थों में एक स्वावलंबी, अहिंसक और तर्कसिद्ध सामाजिक नागरिक थे। कबीर के प्रगतिशील विचारों को गांधी ने व्यापारिक रूप देने की चेष्टा की थी। उन्होंने गीता और कुरान का हवाला देकर साधारण मानवीय सत्य को धर्म का सत्य बना दिया, विचारों और बौद्धिक आधार से हटाकर विश्वास को टिका दिया। अतः एक ओर तो मुसलमानों के लिए गांधी जी एक हिंदू महात्मा बन गए और दूसरी ओर कुरान के उदाहरण देने वाले उपदेशक गांधी कट्टरपंथी हिंदुओं की निगाह में धर्म भ्रष्ट हो गया। कबीर का जो थोड़ी बहुत असफलता मध्य युग में मिली, उतनी गांधी जी को भी इस युग में प्राप्त हुई, किंतु गांधी जी भी अंततः दोनों वर्गों को प्रसन्न न कर सके। वे धर्म के नाम पर देश के विभाजन को न रोक सके। गांधी जी की आंशिक सफलता का यह भी एक कारण था कि वे प्रचलित धर्मों की समानता दिखलाकर आपसी झगड़ों को निपटाने का आग्रह करते रहे। जो लोग किसी कारणवश गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे, उनको धर्मों की असमानता दिखाने का अच्छा अवसर मिला, किंतु कबीर चले ही सारे मानव समाज को एकता लेकर। उन्होंने धर्मों में समानता दिखलाने की आवश्यकता ही अनुभव नहीं की, वे तो इस मानवीय एकता में दीवार खड़ी करने वाले विभिन्न धर्मों की निस्सारता प्रकट करते रहे। गांधी जी विभिन्नता में एकता ला रहे थे, कबीर एकता से विभिन्नता को मिटा रहे थे। दोनों महात आत्माओं की कार्य विधि में अंतर था। कबीर धर्म विचारक और दार्शनिक थे, गांधी जी समाज सुधारक और एक राष्ट्रीय नेता थे। नेता होने के कारण उनकी कुछ सीमाएं थी। गांधी जी सब धर्मों की प्रशंसा आजीवन करते रहे, किंतु उन पर गोली चलाने वाला एक धर्मांध ही था। जो कबीर प्रत्येक धर्म की ऊपरी बातों को उपहास करते रहे, उनके मरने के बाद हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही उनको अपनी अपनी जागीर बना लिया था। उनके शव को लेकर हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा दोनों वर्गों में उनकी लोकप्रियता का एक चिन्ह है। एक विचारक जो संस्कार से मुसलमान, विचारों से हिंदू और सिद्धांतों से मानवतावादी था, उसका अपने समय से दो प्रमुख किंतु विरोधी धर्मानुयायियों में बराबर का ऊंचा स्थान पाना उनके आदर्शों की विजय का एक सुंदर प्रतीक है। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी को यह समझ लेना चाहिए कि वर्तमान दूषित सामाजिक और राजनीतिक वातावरण के विष को समाप्त करने का उत्तरदायित्व कल उसके कंधों पर होगा, और इस उत्तरदायित्व की पूर्ति के लिए उसे संकीर्ण विचारों को त्याग कर उन उदार क्रांतिकारी विचारों को अपनाना होगा जिनका एक प्रकाशन कबीर में हुआ। क्रांतिकारी सिद्धांतों और आदर्शों की स्थापना बिना संघर्ष संभव नहीं है। जो संघर्ष कबीर ने सदियों पूर्व किया और जिसे गांधी जी ने इस युग में अपनाया, देश की उन्नति के लिए हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों को वह संघर्ष जारी रखना होगा। गांधी जी ने सत्य को परमेश्वर माना है। सत्य से बढ़कर न तो कोई धर्म है और न कोई साधना। अनेक धार्मिक ग्रंथों की भांति कबीर ने भी सत्य बोलने एवं धर्म सत्य पालन करने का उपदेश मानव जाति को दिया है। सत्य परम बल है। जीवन में सदैव सत्य का ही व्यवहार करना चाहिए। सत्य गांधी दर्शन की आधारशिला है। सत्य आचरण के संबंध में गांधी जी का कथन है कि विचारों में, वाणी में और आचार में सत्य का होना ही सत्य है। जो इस सत्य को पूर्णतः समझ लेता है, उसे जगत में दूसरा कुछ भी जानने को नहीं रहता। जिस प्रकार महात्मा गांधी के जीवन में प्रकट रूप से राजनीतिक और राष्ट्रीय प्रसंग की अनुस्यूत दिखाई देते हैं, किंतु यदि उनके समग्र जीवन पर ध्यानपूर्वक दृष्टिपात किया जाए तो उसे भीतर मूलतः अध्यात्म और परम चेतना के अन्वेषण की अंतरधारा प्रवाहित होते हुए दृष्टिगोचर होगी।